الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت فرماتے ہیں کہ معصیت کمبخت نہایت بری اور مہلک چیز ہے، اس سے اجتناب کی سخت ضرورت ہے. وہ ذلت اور وہ گھڑی بندے کے واسطے نہایت ہی مقبول اور منحوس ہے جس میں یہ اپنے خدا کا نافرمان ہوتا ہے. اگر ٹھیک ہو تو فوراً معافیت کرنے کے بعد قلب پر ظلمت محسوس ہوتی ہے اور باپ نافرمانی کا یہ اثر بھی ہوتا ہے، یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے عمل کی توفیق سلب کر دی جاتی ہے. بڑے خوف کی بات ہے. اور معافیت میں ایک اور خاصیت بھی ہے کہ اس کے محکوم اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں. ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ شوقی کرنے لگا، فرمایا آج ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری نافرمانی کرتا ہے، تو ہم گردن حکم داور بپیش گردن نفیشت کے حکم تو ہے. اور ایک خاصیت معافیت کی سب سے اثر ہے وہ یہ کہ کبھی بے خبری اور بے حیائی سے کبیرہ سے کبیرہ ثابت ہو جاتا ہے اور اللہ بچائے وہ سب سبب کفر کا بن جاتا ہے. اس لیے انسان کبھی گناہ کر کے بے فکر نہ ہو، توبہ استغفار کرتا رہے، مگر یہ بھی نہیں کہ اسی کو بٹکلا بنا لے اور اسی مراقبے میں رہا کرے، بلکہ ایک بار خوب باقاعدہ توبہ کر کے کام پہ لگے اور اس کے بعد پھر جب تک خیال آ جایا کرے اللہم اغفر لی کہہ کر پھر آگے چلے کام پہ لگے. اللہ والا نے جو معافیت کے بارے میں یعنی گناہ کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بڑی قابل توجہ ہیں اور ہمارے آپ کے لیے بہت بڑے ہدایت کا سامان. سب سے پہلے تو یہ کہ گناہوں سے بچنے کی فکر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بہت سے لوگ نفلی عبادتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تلاوت وغیرہ میں وظائف عملیات اورات ان کی تو فکر ہوتی ہے اور اس کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کی فکر اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام اس درجے میں نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کے نام اعمال میں اللہ بچائے گناہوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ نفلی عبادتیں تو کوئی فرض واجب نہیں. اگر کوئی شخص नफली इबादत न करे तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुआवजा नहीं होगा, कोई पकड़ नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको फर्ज किया ही नहीं, वाजिब किया ही नहीं। तो उस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस पर न कोई मुआवजा होगा, न कोई गिरफ्त होगी, न कोई गुनाह होगा। तो तुमने मसलन तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ा था, या इशराक क्यों नहीं पढ़ी थी, या चाट क्यों नहीं पढ़ी थी, या तस्बीहात क्यों नहीं पढ़ी थी, इस पर कोई मुआवजा नहीं होगा अगर आदमी ये ना करे। ये जरूर है कि करना चाहिए बंदे को, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत कहा है, अल्लाह तआला की खालिफियत, उसके इनामात जो हर वक्त बंदे पर मौजूद हैं, उनका हक है कि बंदा नफली इबादतें भी करे, सिर्फ फराज और वाजिबात पर इस्तेमाल ना करे। लेकिन अगर कोई ना करे फिर पर तो कोई मुआवजा नहीं है लगा रहे, आखिरत पर सवाल नहीं होगा जो भाई तुम्हें ये नफली इबादत क्यों नहीं। लेकिन गुनाह ऐसी चीज है, अल्लाह बचाए, कि गुनाह अगर कर रहा है तो उस पर मुआवजा है। वही यावर इसकाल हजरत खड़ी रही है ना, और वही यावर इसकाल हजरत शर रही है। ये जर्रा बराबर भी अगर किसी ने कोई बुरा काम किया है, शर का काम किया है, नाजायज काम किया है, तो उसको आखिरत में देखेगा। कुरान करीम में फरमाया कि वो देखेगा आखिरत, यानी वो नाम आमाल जब के सामने आएगा उसकी जवाब भी दिक्कत नहीं होगी, उस पर गिरफ्त होगी, उस पर वाहदा होगा। अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला अपनी गफारी और सच्चाई का मुजाहरा न फरमाए तो उसके ऊपर अजाब भी होगा, उसके ऊपर इंसान को असवाद मिले और इकाब भी होगा। अल्लाह बचाए, तो मालूम हुआ कि गुनाह से बचना ज्यादा मुअक्कद है बनिस्बत नंबर अपनी इबादतों। लेकिन हम लोग पहली बात की तरफ तो जरा इस्तेमाल करते हैं कि भाई जरा नफली इबादतें हो जाएं, लेकिन गुनाहों से बचने की फिक्र नहीं होती, गुनाहों से बचाने के अपने आप को एहतमाम नहीं होता। आंख बहक रही है, गलत जगह पर जाकर देख रही है, बदनजरी का इंतकाब हो रहा है, मिल इरादा हो रहा है, जानबूझ कर हो रहा है, लज्जत लेकर हो रहा है, उसकी फिक्र नहीं कि किसी तरह इससे बचे। जबान में वहां पर चल रही है जिसमें गलत गलत झूठ का सब गठबंध होकर चल रहा है, कभी किसी झूठ बोल दिया, कभी रिबन कर दी, कभी किसी के ऊपर दाना मार दिया, कभी किसी की बिरादारी कर दी, कभी किसी पर बोतान लगा दिया, कभी बेतहरीक बातें चलती कर दी, ये सारी बातें गुनाह की हो रही है जबान, और फिक्र नहीं। कान है अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, मगर कान जो है वो नाजायज काम से सुनने में सर्फ हो रहे हैं, और कुछ नहीं तो गिबत के सुनने में सर्फ हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह गिबत करना ना जायज है, उसी तरह गिबत का सुनना भी ना जायज। यह इस किस्म के गुनाह है जो दिन रात सुबह से लेकर शाम तक उसमें इब्तला होता रहता है। अल्लाह ताला फसल दो गर्म से हिफाजत फरमाए, बहुत जबरदस्त इब्तला का दौर है जो इन गुनाहों में, खासतौर से बाहर निकलो बाजार में जाओ तो आंखों को पनाह मिलनी मुश्किल है। ऐसे ऐसे मनाजिर सामने आते रहते हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, और बेपर्दा औरतें घूम रही हैं, तो निगाह बहकती है, और उस वक्त में इस बात का एहसास नहीं होता कि हम मासियत कर रहे हैं, गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं। इसलिए हजरत वाला ने इस मजबूर में खास तौर पर फरमाया कि भाई सारी उम्र अगर एक नफल भी न पड़ी लेकिन गुनाहों से बचते रहे तो इंशाल्लाह निजात हो जाएगी। फराइज़ वाजिबात अदा किए, और गुनाहों से बचते रहे, इंशाल्लाह नजात हो जाए, चाहे एक नफल भी ना पड़े, एक तस्बीह भी ना पड़े। लेकिन अगर तस्बीहात तो खूब पढ़ते रहे, रब की इबादतें भी खूब करते रहे, ताजिल भी हो रहा है, इखलास भी हो रहा है, जात भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ना निगाह की इबादत है, ना जबान की इबादत है, ना कान की इबादत है, ये सब गुनाहों में मुलव्वस हो रहे हैं, तो अल्लाह बचाए महज इन नफली इबादतों की बुनियाद पर नजात होना मुश्किल है। जो अल्लाह तबारक व तआला अपने गफ्फारी को मुजारब फरमा दे वो उनका करम है, लेकिन कायदे के रूप है उन पर पहले गुनाह का गुनाह पर वाक़ा होगा, अज़ाब भी हो सकता है और छूट नहीं होगी महज इस गुनाह पर, तो ये दूसरी बात है बहुत, लिहाजा इसकी फिक्र चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने फ़ज़्ल व करम से फिक्र अता फरमाए और इस फिक्र के लिए हज़रत वाला फरमाते हैं कि चंद बातों का मुराकबा करना चाहिए, करते रहना चाहिए, जिससे गुनाहों की नफरत दिल में पैदा हो और गुनाह से इज्तनाब का जज्बा दिल में पैदा हो, दाया हो कि भाई हमें गुनाहों से बचना है। चंद बातों का मुराकबा हजरत ने फरमाया इस मलबूज के अंदर। पहली बात तो यह कि भाई ये सोचना चाहिए कि जिस रात में अपने फजलो करम से हम पर सुबह से लेकर शाम तक अपने इनामात की बारिश की हुई है, वो गिन सकता है, शुमार कर सकता है अल्लाह ताला के इनामात को, अगर शुमार करना भी चाहोगे शुमार नहीं कर सकते। जिस रात में इतनी जबरदस्त बारिश की हुई है, हमारा सारा वजूद का सर से लेकर पांव तक सारा वजूद सरापा नेमत ही नेमत है अल्लाह तबारक व तआला। अगर शेख साजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी किताब को इस्लाम का आगाज ही यहाँ पे किया है शेख साजी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि फरमाते हैं कि एक और नेमत को छोड़ दो, सिर्फ एक जो सांस आ रहा है तुम्हें सांस की नेमत को देख लो, ये एक सांस जो है जो आ रहा है ये एक मरतबा अंदर जाता है एक मरतबा बाहर आता है, अंदर जाना और बाहर आना ये दोनों मिलकर इंसान की जिंदगी का सामान पैदा करते हैं। अगर अंदर जाए बाहर ना आए तो मौत, बाहर आए अंदर न जाए तो मौत, दोनों बातें होती हैं, अंदर भी जाता है तो भी तो और फिर बाहर भी आता है, तब जाकर इंसान की जिंदगी का पहिया चल रहा है, एक भी काम खत्म हो जाए तो मौत आ जाए। लिहाजा फरमाते हजरत शेख साजी रहमतुल्लाह अलैह कि एक सांस में अल्लाह ताला की दो नेमतें हैं, एक सांस का अंदर जाना और दूसरा उसका बाहर आना। तो हजरत शेख साजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हर सांस में दो नेमतें हैं और हर नेमत पर एक शुक्रवाजी, तो हर एक सांस में चूंकि दो नेमतें हुई तो दो शुक्रवाजी हुए। अगर इतनी देर में तुम दो शुक्र दो नेमतों का शुक्र अदा करो अल्हम्दुलिल्लाह और इससे दूसरा साथ आए, और जब दूसरा साथ आएगा फिर दो नेमतें फिर दो शुक्र, उसका शुक्र अदा करने चाहोगे तीसरा आ जाएगा, तो सारी जिंदगी अगर सिर्फ एक सांस की नेमत का भी शुक्र अदा करते रहो सारी जिंदगी और कोई काम न करो तो तन्हा एक सांस की नेमत का भी शुक्र अदा करो और नेमतों को छोड़ दो जो बेसवाद नेमत है, सिर्फ एक सांस की नेमत और चूंकि मुफ्त मिली हुई है अल्लाह ताला की तरफ से, कोई मेहनत मशक्कत करके हासिल नहीं हुई, पैसे देकर हासिल नहीं हुई, ज्यादा मदद नहीं आ रहा है, रफ्त आमद रफ्त आमद खुद चल रही है, सांस चल रहा है और बेतकान चल रहा है, मदद नहीं होती शुक्राना करने की तौफीक, एक बार भी शुक्राना करने की तौफीक नहीं होती साहब। अरे भाई हर सांस पर शुक्राना क्या करोगे, सारी जिंदगी में सारे दिन में सुबह में लेके शाम तक जितने हजारों सांस लिए, एक मुर्तबा शुक्राना करते अल्लाह तेरे अपने फजल करम से ये सांस अदा फरमाया है, ये आपकी नेमत है, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। तो एक मतलब तौफीक नहीं होती, वास्ते तो पता ही नहीं क्या नेमत है, कितनी बड़ी नेमत लड़ती है। किसी दिन अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए, किसी दिन जरा था कि सांस के अंदर कोई रुकावट पैदा हो जाए, किसी दिन रुकावट पैदा हो जाए, सांस बाहर ना आए, अंदर ना जाए, कुछ देर लग जाए सांस के आने में, देखो क्या होता है, बेचैनी का आजम, बेताबी का आजम, और दर्द और तकलीफ। उस वक्त में अगर कोई कहे कि देखो भाई ये सांस जो है तुम्हारा रुक गया, अब दुनिया भर की सारी दौलत जो तब तक कमाई थी सब नोट खोलेंगे और नहीं खोलेंगे, तो बताओ सारी जिंदगी की कमाई खर्च करने को तैयार हो जाएगा आदमी के नहीं, जो भाई जिसकी दौलत है वो खर्च हो जाए मगर मेरा सांस बहाल हो जाए। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह दे रखी है मुफ्त दे रखी, और ये तो एक मिसाल है सांस की। सब से लेकर पांव तक कुरान करीम बार बार कह रहा है कि अपने अपने आप में गौर किया करो, जहां से तुम्हें क्या तो क्या कुछ नवाजा हुआ है, किस किस तरह नवाजा हुआ है, सर से लेकर पांव तक जितने आता है, ये अजीब गरीब मशीन है जो अल्लाह ताला ने आता फरमा दिया है इंसान को, पता भी नहीं इसको कि ये मशीन क्या काम कर रही है। सदियां बीत गई है साइंसदानों को और अफीफा को और डॉक्टरों को इसकी तहकीक करते हुए कि सर से लेकर पांव तक जो ये मशीन है काम कर रही है, किस तरह कर रही है। अब तक पूरी मशीनरी का इल्म हासिल नहीं हो सका तो किस तरह काम कर रही है, दिमाग कैसे काम कर रहा है, दिमाग का कौन से हिस्से का क्या अमल होता है, दिल किस तरह काम कर रहा है, आंखें किस तरह काम कर रहे हैं, ये आंखों में लचक कैसे पैदा हो गई है, जब जाते हैं मुंह से जो कलिमा दिमाग में आया मुंह से निकाल दिया, बात कर ली, हाथ को जरा हटाना चाह जरा देर के अंदर अपने हाथ को जिस तरह चाह घुमा दिया, उससे जो चाहे काम ले लिया, खाना खा लिया, खुदा जाने क्या आला भला खा लिया, अल्लम अल्लम जो मुंह में आया और जायका अच्छा लगा वो खा के अपने हालत से उतार के चले गए, सब दुनिया भर की आला भला इकट्ठी कर ली मेले में, वहां अल्लाह तबारक व तआला की मशीन लगी हुई है जो उसको छांट रही है, उसके अंदर से खराब अज्जा को अलग निकाल रही है, आला अज्जा को जिसमें बाकी रख रही है, और उसके जरिए सब अनाइल बस रही है, उससे खून पैदा हो रहा है, उससे रूह को तकवीत मिल रही है, उससे तमाम आजा को सवानाई हासिल हो रही है, और जो खुजला है वो अल्लाह ताला खुद ब खुद करके बाहर फेंक रहे हैं, और खुद ब खुद उसके फुजन अज्जा से नजात मिल रही है, और आला तरीन अज्जा जो है वो जिसम में बाकी रह रहा है। ये सारा कारखाना अल्लाह ताला ने लगा रखा है, इंसान को कुछ पता नहीं, वो खा के सो गया अपने और खा के अपने काम में लग गया, वो कारखाना जो है वो खुद ब खुद काम कर रहा है अल्लाह ताला की तरफ। वर्णा फरमाते मानबूज लुत्फ हो ना मुफ्त है माफी सुनो, क्या तुमने कहा था अल्लाह ताला से दिया लग गया ऐसा दिल बना देना, ऐसा बेटा बना देना जो हजम किया करे इस तरह, ऐसा जिगर बना देना जो खून बनाया करे, ऐसा गुर्दा बना देना जो मेरे लिए पेशाब को अलग कर दिया करे, ऐसी आंखें बना देना जिससे तो गुर्दा खारिज हुआ करे, और उसका ये निजाम बना, तुमने कहा था अल्लाह ताला से, तुमने मांगा था, कुछ भी नहीं, तुम्हें तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा है इसमें। वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से खुद निजाम बना दिया तुम्हारे वास्ते, मानबू से वो तकाजा मानबू, न हमसे वजूद में न हमारे तरफ से कोई तकाजा था, लुत्फ हो ना मुफ्त है इमाम सुरूद, उसके रहमत ने वो बातें सुन ली जो हमारे जबान से कहीं भी नहीं है, और ये निजाम बना दिया। तो कुछ इंतहा है, कुछ ठिकाना है उस मालिक की नेमतों का जिसने हमें विहार किया हुआ है सुबह से लेकर शाम तक अपनी नियमतों में। तो आदमी को मुराकबा ये करना चाहिए कि भाई इतना बड़ा पुण्य, इतने बड़े इनाम इनामात से नवाजने वाला जिसने ये नियमतें हमें अता फरमाई हुई है, उससे चंद बातें हैं जिनसे हमें मना करना है। अक्सर काम तो वो है जो जिनकी उसने इजाजत दे रखी है, ये भी कर सकते हो, 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 सब इजाजत दी हुई है। चंद काम है जिनसे रोका हुआ है। अगर जरा मुआवजा करो तो जायज काम जो है दुनिया में वो बाहर के जो अल्लाह ताला ने जायज कर रखे हैं वो लामहदूद हैं, बेशुमार हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और जिन कामों को मना किया है, रोका है जिनसे, जिनको हराम करार दिया, नाजायज करार दिया, वो गिने चुने गिने चुने काम है। ये ना करो बाकी सब कर सकते हो। तो उस मुनहिम हकीकी ने जिसने की जिसके इनामात की बारिशों में हम जी रहे हैं, उसने अपने फजल व करम से चंद गिनी चुनी बातों से हमें रोका है। ये आंख हमने तुम्हें दी है, ये सरकारी मशीन है जो अल्लाह तबारक व तआला से तुम्हें अता हुई है, खूब इजाजत है, जितना चाहो इससे लुत्फ उठाओ। अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हसीन मनाजिर को देखो, इसे इसके इसे करता हुआ शादाब मनाजिर को देखो, अपने आजीज अपने दोस्त अहबाब अपने अकारिब जिनसे तुम्हें मिलकर और उनको देखकर तुम्हें फरक हासिल होती है, उनसे उनको देखो। इसके जरिए तुम कुरान करीम को देखो, उसके जरिए तुम किताबों का मुताला करो, सब कुछ हलाल है तुम्हारे लिए। सिर्फ इतना है कि चंद पाबंदियां लगाई गई हैं कि देखो किसी नामहरम पर लज्जत लेने की गरज से निगाह न डाल, बस इतनी बात जिससे रोका जाए। अब जरा आदमी को ये मुराकबा करना चाहिए कि जिस दास ने ये नेमत अता फरमा रखी है, इतनी बड़ी नेमत दे रखी है। आपका भी ये मामला है कि अगर किसी वक्त बिनाई खतरे में पड़ जाए तो आप सारी दुनिया की दौलत देने को तैयार हो जाए कि बिनाई वापस आ जाए। इतनी बड़ी नेमत दे रखी है, इतनी बात कह रखी है कि भाई नाम महरम पर लज्जत लेने की गरज से निकाह न डालो, उसका नाम पता है किसका बच्चा। तो कितनी बड़ी बेगैरती की बात है कि जिस मुनहिम ने कितनी नेमतों से नवाजा है, उस मुनहिम की हुक्म की खिलाफ वर्जी करूं मैं, कितनी बड़ी बेगैरती की बात है, कितनी बड़ी एहसान फरामोशी की बात है, कितनी बड़ी हरामखोरी की बात है कि आदमी किसी की दी हुई नियामत को उसी के नाफरमानी में इस्तेमाल करें। फर्ज करो कि आपका एक नौकर है और उसको आप तनख्वाह भी देते हो और उसने उसको आपने कोई चीज दे दी है इस्तेमाल करने के लिए। फर्ज करो कि वो आपने उसको ये कह दिया भाई तुम रोजाना घर से आते हो, आने जाने में तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम्हें साइकिल दे देते हैं, उसको इस्तेमाल किया करो, वैसे ही दे दी मुफ्त। अब देखो उसके लिए एक नियमत है कि आपने एक नियमत दी, वो साइकिल में बैठ के आपके खिलाफ के दुश्मनों के पास जाए और उनसे साजिशें करे आपके खिलाफ, तो आपको कितना बड़ा कितना गुस्सा आएगा कि मैंने जो चीज दी थी अपनी राहत के इस्तेमाल करने के लिए दी थी, ये मेरे खिलाफ साजिश में इस्तेमाल कर रहा है, मेरे खिलाफ नाफरमानी में इस्तेमाल कर रहा है। तो कितनी बड़ी नमक हरामी की बात, कितनी बड़ी एहसान फरामोशी की बात। तो आदमी को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हर गुनाह जो है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर मुस्तबिल होता है, ये इतनी बड़ी जलालत है, कमीनगी है,
कि जिस रात की नेमतों से दिन रात मुतवक्के हो रहे हैं उस रात की हुक्म के खिलाफ वर्जी करके उसकी उसी की दी हुई नेमत को उसमें इस्तेमाल करें, इसका मुराकबा करने से अल्लाह ताला अगर यह हकीकत हमारे दिलों में उतार दे तो गुनाह से नफरत हो जाए। ये तो बड़ी काबिल नफरत बात है जब उसकी दी हुई नेमत को उसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करें। अव्वल तो ये बात ही समझनी चाहिए। इसे फरमाते हैं अल्लाह कि नहायत ही कमबख्त और बुरी और मोहलिक चीज है, और फरमाया कि वो खड़ी बंदे के हक में नहायत ही मकबूल है जिसमें ये अपना खुदा का नाफरमान होता है। क्योंकि एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला यज़्नी ज़ानी हिना यज़्नी व हुवा मोमिन, कोई बदकार जिस वक्त बदकारी करता है उस वक्त में वो मोमिन नहीं होता। चोरी करने वाला किस वक्त चोरी करना होता है उस वक्त मोमिन नहीं होता, यानी उस वक्त में उस खास वक्त में उसकी सिफत ईमान कल आदम हो जाती है, गोया क्या है ही नहीं। क्योंकि मोमिन का काम जिसका ईमान होता अल्लाह ताला के ऊपर, अल्लाह ताला की रज़ाकियत पर, उसके इनामात पर, उसकी कुदरत के काबिला पर जिसका ईमान होता, उससे अगर वो सिवा होता और उसके ऊपर उसका इंतजार होता तो कभी इस गुनाह का ये जड़प इकदाम करना ही नहीं। किया है तो इस हालत में किया है कि वो जो अंदर ईमान था वो कल आदम हो गया। ये ईमान जो है ना अजीब नेमत है अल्लाह ताला की, ये इंसान को गुनाह से अगर ईमान सालिम हो और कामिल हो तो वो ईमान इंसान को गुनाहों से रोकता रहता है। ये जो एक साहिब ईमान के दिल में गुनाह करने से जरा सी रुकावट पैदा होती है ना दिल में, या नदामत होती है या रुकावट होती है, जैसे अब ये कौन पैदा करता है, ये ईमान जो दिल में है वो पैदा कर रहा है। क्योंकि ईमान इस बात पर कि अल्लाह जल्ले जलालहू मेरे मालिक को खालिक है, और ईमान इस बात पर जो फला चीज से मुझे रोका है, तो अब अगर नफ्स इंसान का या शैतान उसको गुनाह की तरफ ले जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ईमान की जो तराजियत है ये उसको रोकती है, रुकावट बनती है, उसके दिल में धड़का पैदा होता है, दिल में एक रुकावट पैदा होती है, ये नेमत है रुकावट। लेकिन अगर कोई शख्स इस रुकावट को पामाल करके इसको रोक कर गुजरा गुना, तो इसके माना यह कि उसने उस ईमान की सिफत को कल आदम कर दिया उसको, और अब वो जो है इस वक्त में कर रहा है उस वक्त में ईमान उसका बिल्कुल मुजमही इतना कमजोर और नाकारा हो गया कि वाकल हो गया जैसे कि है ही है कला। तो आप अंदाजा करो कि जिस वो खड़ी कैसी खतरनाक होगी जिसमें इंसान का ईमान जो है वह कल हो गया हो, कल आदम हो गया हो, अल्लाह बचाए अल्लाह ताला हर साहिब ईमान को हिफाजत करे। इसलिए फरमाया कि वो खड़ी जिसमें कोई बंदा माफियत करना होता है वो इंतहा मकबूल होती है और मनहूस होती है, क्योंकि उस लम्हे में गुनाह ने उसको ईमान के नूर से महरूम कर दिया। अब बताते खुद यही कितनी बड़ी बला है कि आदमी उस लम्हे में ईमान के नूर से महरूम हो गया, कितनी बड़ी बला है। और दूसरी बात ये हजरत फरमाते हैं इससे मुराकबा करना चाहिए कि हर माफियत और हर गुनाह ये जुल्मत है, तारीकी है, अंधेरा है। ईमान नूर है, हमारे सारे नूर है, और गुनाह और माफियत और कुफ्र ये क्या है, ये तारीकियां हैं, ये जुल्मतें हैं। लिहाजा जिस वक्त अल्लाह बचाए किसी से माफियत का सुदूर होता है तो कल्ब पर एक जुल्मत का एक तारीखी छा जाती है। उस तारीखी का नतीजा जो होता है कि इंसान उस तारीखी की वजह से हमारे साले के तरफ जो है उसका रुझान, उसका शौक, उसका इंतजार, उसका नशाब ये कमजोर पड़ जाता है और गुनाह की तरफ रगबत पड़ जाता है जो गुलबत की वजह तारीखी की वजह हर गुनाह के खाते है। हदीस में आता है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह बताए उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लगा दिया जाए, दूसरा करता है दूसरा लगा जाता है, तीसरा करेगा तीसरा लगा दिया जाए, यहाँ तक कि ऐसा वक्त आता है अल्लाह बताए कि सारा दिल जो है वो मासियतों के सियाह नुक्तों से भर जाता है, फिर दिल पर जंग लग जाता है। वो जंग ऐसा है कि उसके बाद फिर आदमी के अंदर नेकी की सलाहियत और बुराई को बुराई समझने का इतराफ खत्म हो, बहुत ही बुरा वक्त है उसका, तो खुलबत पैदा करता है। अल्लाह, हम लोग तो हो गए बेहिस, अल्लाह बताए जिस तरह की जिंदगी गुजर रही है तो गफलत की वजह से बेहिस हो गए। इस वास्ते न नेकी का नूर महसूस होता है न गुनाह की गुलमत महसूस होती, सब एक साथ बात मालूम। जिसको अल्लाह तबारक व तआला इस राह के सही अता फरमाते हैं तो उनको इस माफियत की जुलमत का एहसास होता है, उनको इस माफियत की जुलमत का एहसास होता है। सहाबे किराम मुजमईन के हालात में तो है ही मजबूत कि अगर कभी कोई लाजायज लुकमा गैर शुरू तौर पर भी चला गया तो उसकी गुर्बत महसूस की और गुर्बत महसूस करके उसको पैक कर निकाल दिया। लेकिन हमारे गरीबी बुजुर्गों में हमारे अकाबिर उलमा देवबंद में भी मुतासिर वाकयात हैं, ऐसे ही हजरत माना मोहम्मद याकूब नानावी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कारणों के फजल मुदर्रिसीन थे, वो फरमाते थे कभी अगर किसी जगह दावत में गए और वहां पर जिस शख्स ने दावत की उसका आमदनी मसल हराम की है मसकूक थी तो हमें तो पता था कि क्या है लेकिन आमदनी खराब गलत थी, खाना खा लिया तो फरमाया के बावजूद है कि लाइमी में खाया है जो आपसे गुना इनके हाथ में गुना नहीं लेकिन चूंकि आराम लुकमा था इस वास्ते महीनों फरमाया उसकी जुलमत अपने कल्ब में महसूस कर सकता, महीनों उसकी जुलमत अपने कल्ब में महसूस कर सकता। क्या जुलमत? फरमाते ये जुलमत ये थी कि बार बार मुख्तलिफ गुनाहों के तकाजे दिल में पैदा होते जो पहले नहीं पैदा होते, पहले कभी उस किस्म के गुनाहों के तकाजे दिल में पैदा नहीं हुए लेकिन ये हराम माल खा लिया गलती से भूल चूक से खा लिया उसके बावजूद अपना असर दिखा रहा है, असर क्या दिखा रहा है कि उसके गुनाहों के तकाजे पैदा हो, बेचारा बुरा गुनाह कर लू बुरा गुनाह कर लू बुरा गुनाह कर लू बार बार तकाजे, ये जुल्मत महीनों कहते महसूस होती है। हम लोग तो हो गए पहली से बात है ना उसका नूर पता लगे नहीं किसका नूर पता लगे ना गुनाह का गुर्बत पता लगे लेकिन जिनको अल्लाह ने इतराक किया वो जानते अल्लाह ताला फिर हमसे में तौफीक दे एहतमाम दे तो जब सीना साफ हो तो उस वक्त पता चले कि अगर खुदा न करे कभी गुनाह का थप्पा लगे तो कैसे गुर्बत पर अल्लाह ताला हम फिर हमसे ये इतराक का एहसास का फरमा तो जुलमत होती है। तीसरी बात जो गुनाह में एक खासियत है वो ये है कि अल्लाह बचाए जो इंसान की अकल खराब करता है, मत उल्टी कर देता है। मासियत की खासियत यह है कि वो इंसान की अकल को खराब कर देती है, समझ गुजार देती है, मत उल्टी कर देती है। अच्छी चीजें बुरी नजर आने लगती है, बुरी चीजें अच्छी नजर आने लगती है, ये भी गुनाह की खासियत है। इस बात से कि देखो ये अकल जो है ना, अल्लाह ताला ने अता फरमाई हमें आपको, ये अच्छे बुरे की तमीज करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेकिन आप देखते हो कि यही अकल है जो बहुत से लोगों के दिल में गुनाह का जज्बा पैदा कर रही है, यही अकल है जो बहुत से लोगों को नेकी की तरफ ले जा रही है। तो इस अकल के सही इस्तेमाल के लिए और इसके इसे सही फायदा उठाने के लिए अल्लाह ताला ने आयत करीमा में फरमाया, बड़ी याद रखने की आयत है, फरमाया अगर तुम अल्लाह से डरोगे, तकवा इख्तियार करोगे, तो तुम्हें एक ऐसा मेयार अल्लाह का फरमा देंगे जो हक और बातिल में और खैर और शर में और अच्छे बुरे में तमीज करने वाला होगा। यानी अच्छे बुरे की तमीज पैदा कैसे होगी? तकवा से होगी। अगर तुम्हारे दिलों में तकवा है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह तुम्हारे मुताबिक की माफियतों से इज्तनाब है, गुनाहों से बचने की फिक्र है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वो तमीज अता फरमा देंगे जो तुम्हें अच्छे बुरे की का फर्क बताएगी कि ये चीज अच्छी है ये बुरी है। तो इन तकवा है अल्लाह को फरमा। अब जब तकवा को आप अल्लाह बचाए सबसे बुझ डाल दिया, मासियत का इंतकाब करके, गुनाह का इंतकाब करके, तो वो जो तमीज अल्लाह ने अता फरमाई थी तकवा की बदौलत वो तमीज जाती रही। अब मत उल्टी हो गई, अकल खराब हो गई, और वही चीज जो बिल्कुल बतीनी तौर पर बुरी थी उसी को आज अच्छा समझे। देखो आज तरह तरह के नारे सुनने में आ रहे हैं सारी दुनिया में, ऐसी ऐसी बातें लोग कर रहे हैं कि आज से अगर 100 साल पहले या 200 साल पहले कोई जबान से निकालते हुए भी शर्माता उसको, ये तो बिल्कुल बदीहुल बुद्रान बात। सारी दुनिया उसकी खराबी पर मुस्तफिल थी, लेकिन आज लोग जो है बड़े धड़ल्ले से अकल के जोर पर कि हमारी अकल में इसको तो खराबी नजर नहीं आती, ये कह रहे हैं बड़े धड़ल्ले से। अब देखो जैसे अल्लाह बचाए आजकल बड़ा जोर है हम जिस परस्ती का, तो सारी तारीफ उठा के देख लो सिवाय और महलूत सलाम से किसी ने भी इस बुराई को अच्छा नहीं करा, सही करा सकता, किसी दीन में, किसी मजहब में, किसी निजाम अखलाक में इसको अच्छा नहीं समझा गया। सबने बुराई की, हर आदमी की अकल ये कहती बुरी है। आज बड़े धड़ल्ले से लोग जो है उसके हक में दलाइल पेश कर रहे हैं, अकली दलाइल पेश कर रहे हैं, अकली तौर पर उसको कहा जा रहा है सुझा खराबी है, इस पर मुजाकरे हो रहे हैं, इस पर मजामी लिखे जा रहे हैं, इस पर किताबें तालीफ हो रही हैं, इस पर पूरा पूरी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, मुतालबात हो रहे हैं, मर्द मर्द की शादी करने के लिए मुतालबात हो रहे हैं, और क्या हो रहा है कि इसके ऊपर बिल पेश किए जा रहे हैं और गाड़ियों की गूंज में उसको मंजूर भी किया जा रहा है। यही आखिर है जो किस तरफ जा रही है, क्यों? इसलिए कि अल्लाह की माफियत करते 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 वो अकल की मत ऐसी उल्टी हुई है कि बुरी चीजें अच्छी लगने लगी और अच्छी चीजें बुरी लगने लगी। तो माफियत की एक खासियत यह है कि इंसान की अकल खराब कर देती है, अच्छे बुरे की तमीज मिटा देती है। लिहाजा जब हो जाए तो आदमी को फौरन फिक्र करनी चाहिए तौबा और इस्तगफार की, और फिर उससे ऐसा बचने की कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके तकरार से होते होते ये मत उल्टी कर दे। तीसरी बात हजरत वाला फरमाते हैं ये है कि माफियत के खातिर यह है कि एक गुनाह कर लो तो एक गुनाह दूसरे गुनाह की तरफ देखता है। बाद धोखा हो जाता है, बड़ा सख्त धोखा शैतान का और नफ्स का, जरा समझ लो भाई, बड़ा शैतान और नफ्स का धोखा होता है कि यार ये एक मरतबा ये खारिश पैदा हो रही है, ये गुनाह की एक मरतबा कर गुजरो, हसरत निकल जाएगी और फिर हमेशा के लिए तौबा कर लेगा। ये शैतान बड़ा जबरदस्त धोखा देता है इंसान को, ये कहता हूं कि एक मरतबा इस ख्वाहिश को पूरा कर लो और उससे हसरत निकल जाएगी, वरना हसरत रहेगी कि भाई ये काम न किया जिंदगी में, हसरत निकल जाएगी और चूंकि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले हैं लिहाजा एक मरतबा करके फिर तौबा करने के कभी फिर नहीं करेंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे, हसरत भी निकल जाएगी, शौक भी पूरा हो जाएगा और तौबा भी कर लेंगे और माफी भी हो जाएगी। ये बड़ा जबरदस्त धोखा देता है शैतान। याद रखो कि ये इतना बड़ा फरेब है लफ्ज़ शैतान का लफ्ज़ है कि इसमें बड़े बड़ों को उसने सिद्ध कर दिया है। अव्वल तो भाई तौबा के भरोसे पर गुनाह कर लेना, इसकी कौन गारंटी देता है, किसने गारंटी दी है कि गुनाह करने के बाद तौबा की तौफीक हो जाएगी, तौबा का वक्त भी मिलेगा, तो इसे गारंटी लेकर आए हो कि जिंदगी रहेगी, या अगर जिंदगी भी रहे तो आज जो कहना तौबा कर लूंगा, ये तौबा करने का इरादा, तौबा करने की फिक्र, तौबा करने का अब नताया, ये बाकी रहेगा गुनाह के बाद ना रहा था। दूसरे ये कितना तजुर्बा यह है कि हमेशा जब कोई शख्स इस फरेब में आकर किसी गुनाह का इर्तिकाब करता है तो उससे गुनाह की प्यास मिटती नहीं है और फर्क है, बल्कि पहले तो गुनाह के उसके दरमियान एक हिजाब था, कुछ रुकावट थी, आदमी को जुरत नहीं हो रही थी, लेकिन जब एक बार जुरत हो गई तो कहना भाई एक बार तो कर लिया चलो दूसरी बात कर, तो वो रुकावट दूर हो जाती है और प्यास और फड़क जाती है, उसमें तस्कीन नहीं होती, उसके नतीजे में आदमी बार बार फिर मुबतला होता है और फिर लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये कहना के साथ तौबा कर लेंगे तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला माफ करे, पता नहीं इस गुनाह की जुलमत से, उसकी नहूसत से तौबा की तौफीक भी सलब हो जाए, फिर क्या करो। हमारे वाले साहब पर सल्लल्लाहु तआला हुज़ूर अकरम के दर्जात पर फरमाएं, वो फरमाया करते थे कि तौबा की तवक्को पर गुनाह कर लेना ऐसा है जैसे दरियाब के भरोसे पर अपने आप को सांप से कटवा लेना, कि दरियाब के पास रखा हुआ ही है, लाओ वो सांप अगर डस ले तो कोई बात नहीं, कोई करेगा दुनिया में कि दरियाब पास रखा हुआ है सांप डसेगा तो क्या है, मैं सौरव दरियाब नहीं दूंगा, कोई भी अकल रखने वाला ये काम नहीं कर सकता। यही बात गुनाती है, अपना वाक्य सुनाया करते थे अजवाली साहब अस्पताल, अगर हमारे अजवाली साहब अस्पताल को एक अमल आता था, बिच्छू अगर किसी को डस लेता तो हजरत वाले साहब को अमल आता था बिच्छू के झाड़ डसे हुए को झाड़, और इतना मुजर्रब तीर बहादुर जो बड़े बड़े तड़पते हुए लोग आते थे बिच्छू के डसे हुए, और हजरत वाले साहब अमल पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह फौरन वो ठीक हो जाता, ऐसा अमल आता था। तो हजरत वैसा फरमाते हैं कि एक मरतबा देवबंद में बल्कि अपना वाक्य बयान फरमाते हैं कि मैं कुछ अपने लिख रहा था, कोई किताब किताब शादी कर रहे थे, हमारा कुछ लिख रहे थे पर जाने का, वहाँ बिजली बिजली होती थी, लालटेन होती थी, लालटेन की रोशनी में लिख रहे थे। तो मेरी वालिदा रहमहुल्लाह तआला, उनको किसी गरीबी कोठरी में जाने की जरूरत पड़ जाती कोई चीज लेने के लिए, एक कोठरी के बराबर वहाँ अंधेरा था। तो हज वाले साहब से उन्होंने कहा कि जरा मुझे जो मैंने चाहिए लालटेन दे दीजिए, तो मैं यहाँ कोठरी में जाके कुछ सामान निकाल रहा है। अब हज वाले साहब फरमाते हैं मैं लिख रहा था बहुत जरूरी तहरीर, तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्या लालटेन क्या जरूरत है, सामने कोठरी है, वो चीज सामने रखी है, उठा ले वहां से। तो मेरी वालदा ने कहा कि भाई वहाँ बिच्छू उच्छू बहुत होते हैं, कहीं बिच्छू ने टस लिया तो क्या हो। तो वैसा फरमाते हैं कि मेरे मुंह से ये जुमला निकल गया कि अगर बिच्छू ने टस भी लिया तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, बिच्छू ने अगर टस भी लिया तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, यानी तुम्हें क्या नुकसान होगा। इस वास्ते कि अगर टस भी लिया तो मैं फौरन अमल पढ़ दूंगा, तो बड़े बड़े बिच्छू के टसे हुए आया है जिनके ऊपर अमल पढ़ा दिया और वो दुरुस्त हो गए। अगर टस भी लिया तो क्या, अब अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ तो बाल का साहबा चली गई कोठरी में और वो चीज लेने के लिए गई, वहां वापिस बिच्छू ने टस। अब जो आई तो तकलीफ में बिच्छू का रखा हुआ, अल्लाह बचाए बड़ी सख्त तकलीफ होती। अब वैसा साहब फरमाते हैं कि मैंने अपने अमल का सारा दौर लगा दिया उसके ऊपर, मगर वो तकलीफ थी जो जाहिर थी किसी तरह वैल। अब जितना जितना बाबर आता था बार बार पढ़ते रहे मगर नहीं होता वो जो कर दू तकलीफ, तो पता नहीं किस तरह उसको अल्लाह ने उसको दुरुस्त किया। तो फरमाते हैं अल्लाह ताला ने दो सबक दिए बड़े आदमी, एक सबक तो यह कि कभी बड़ा बोल ना बोले कोई आदमी, कितना ही बड़ा किसी शख्स के पास कोई हुनर हो, कोई कितना बड़ा कमाल हासिल हो, लेकिन कोई बड़ा बोल ना बोले कि भाई हम ये काम कर ले कर गुजरे गए, अल्लाह ताला ने फौरन सुना दिया। और दूसरा ये कि अमल के भरोसे पर या इलाज के भरोसे पर बीमारी से बेपरवाह हो जाना है, कि क्योंकि हमारे पास इलाज है लिहाजा पे बीमारी आए तो आए, बीमारी से बेपरवाह हो जाना ये बड़ी हमाकत की बात है। और इसी पर हलवाई साहब ने फरमाया कि इससे सबक ये मिला कि तौबा के भरोसे पर गुनाह कर लेना, जो बाद में तौबा कर लेंगे उसके बिना पर उसके भरोसे पर गुनाह कर लेना, ये बड़ी ऐसी बात है कि कोई आदमी अमल के भरोसे पर बिच्छू से डसवा लेता है, तो ये धोखा अल्लाह बचाए ये मत उल्टी कर देता है। ये एक मरतबा माफी सरजत हो तो दिमाग का रुख तब्दील हो जाता है, फिर तौबा की तरफ जाने के बजाय मजीद गुनाहों की तरफ जाने लगता है, और वो एक गुनाह दूसरे गुनाह को खींचता है। ये चौथी खराबी है। पांचवी खराबी हजरत फरमाते हैं यह है कि जब कोई सब अल्लाह बचाए अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, माफियत करता है, गुनाह का इंतकाम करता है, तो अल्लाह ताला उसके मातहतों को उसका नाफरमान बना दे। अच्छा तुम हमारे बंदे थे और हमारे बंदे होने के बावजूद तुमने गुनाह का रास्ता अख्तियार किया, हमारी नाफरमानी की, लो तुम्हारे मातहत तुम्हारे साथ ही शुरू। तो अब उसके जो घर वाले हैं, औलाद है, बीवी बच्चे हैं, उसके घर में काम करने वाले नौकर चाकर हैं, मातहत हैं, वो उसकी नाफरमानी, ये गुनाह का दूसरा। आज जो ये शिकायत आम है कि औलाद नाफरमान हो रही है, औलाद जो है बात नहीं मानती माँ बाप, तो उसका एक बड़ा सबब यह भी है कि भाई जब अल्लाह ताला की नाफरमानी से तुमने परहेज न किया, उसको अहमियत न दी, तो फिर तुम्हारे क्या शिकायत है अगर तुम्हारे माता है तुम्हारे नाफरमान हो गए। अगर तुम वाकई नहीं किया है कि गुजरते घोड़े पर सवार हुए तो वो चौकी करने लगा, यानी चलता नहीं था ठीक ढंग से, चलाना चाहते थे चल नहीं चलता नहीं था। तो हजरत फरमाते उन्होंने फरमाया कि ऐसा लगता है शब्द जरूर को गुनाह हुआ है जिसकी वजह से ये हमारी नाफरमानी करता है। यहाँ तो बात यह है कि जब कोई बंदा अल्लाह का मुती बन जाए, फरमा बरदार बन जाए और उसकी नाफरमानी से एतराज करे, अपनी सारी जिंदगी को उसके ताबे फरमान बना ले, तो लगता है सारी कायनात उसके लिए मुनक्कर कर दे। ताबे ग्राम को देखो, उन्होंने हवाओं पर हुकूमत की, जानवरों पर की, दरियाओं पर की। वाकया सुने होंगे आपने, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब मिस्र पता हुआ तो मालूम हुआ कि दरिया नील जो है वो वहां पर एक रस्म चली आती है कि अचानक किसने चलते दरिया नील रुक जाता है और बहना बंद हो जाता है। और यहाँ पर आम तौर से जो बात मशहूर है कि जब तक एक नौजवान लड़की को बहुत श्रृंगार सिंगार करके उस दरिया के अंदर डाला न जाए उस वक्त तक वो चलता नहीं, बंद हो जाता है। एक लड़की की कुर्बानी मांगता है, हर साल ये होता है वहां मित्र। हजरत आमिर ने आस रज़ी अल्लाह अन्हु पता किया था मित्र, जब वो वक्त आया बंद हो गया दरिया और लोगों ने कहा कि साहब मित्र इसके बगैर नहीं चलेगा कि एक लड़की को इसमें डाला जाए, कुर्बानी नहीं करते। हजरत आमिर ने आस ने कहा ये तो कोई तरीका नहीं, इसे हमने ये तरीका तो हमारे लिए जायज नहीं है, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं करेगा दरिया नहीं चलेगा, सारे लोग भी ऐसे बन जाएंगे, एक लड़की को कुर्बानी देते हैं उसका मुख्तम की जिंदगी बच जाती है वरना सारे के सारे प्यासे मरेंगे। हजरत आमिर ने हाथ ने कहा नहीं ये माँ ये काम तो मैं नहीं कर सकता, मैं भी लोगों को लिखना होगा। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु को ये पिस्टल बैठा दिया, बताइए क्या करेंगे। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गया कि ये कोई शैतानी चक्कर है और यकीनन कोई कि कुछ शैतानी तसल्लुफ है जिसके जरिए हो रहा है। तो फारूक आजम ने आजम ने आज को लिखा कहा कि मैं इसके साथ तुम्हारे पास एक खत भेज रहा हूँ, ये खत है दरियाए नील के नाम, दरिया के नाम, ये खत उसमें डाल देना फिर देखो क्या होता है। तो खत में लिखा फारूक आजम ने कि ये खत है अमीर मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की तरफ से दरियाए नील के नाम, और ए दरिया अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो मैं अल्लाह के बंदों का अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं तुझे हुक्म देता हूँ तो फौरन रवाना हो जाऊँ, और अगर तू अल्लाह के अलावा किसी और हुक्म किसी और के हुक्म से चलता है तो मैं तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं। ये खत लिखा फारूक आजम ने दरियाए नील के नाम और भेज दिया। हजरत अमर इब्न आस के पास पहुंचा, हजरत अमर इब्न आस फरमाते हैं ये खत डाल दिया दरियाए नील के अंदर, तो अगर खत डाल रखा रुपया दरिया में रवा हो जाए रवा हो और ये सारी रस्म बस खत्म हो। तो वो जो कहा कि ये मोहम्मद से वफा तू है तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम दे रहे। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना मुती फरमा बरदार बना ले, अपना काबे फरमान बना ले, तो फिर ये सारी कायनात अल्लाह ने मुतखर कर दी अल्लाह सुबह अपने उन बंदों के लिए जो मुती है उसमें। बोले आप शुरू हुआ अपने पास की मुझे था बोले आप मुस्तकी अल्लाह तआला ने अता कर। तो अगर कहीं नाफरमानी नजर आ रही है हमें अपने मातहतों में, अल्लाह बचाए बसाए और आलाम और आफात नजर आ रही है, यकीनन ये हमारे किसी गुनाहों का खमियाजा है जो हम भुगत रहे हैं। خیال استغفار اور توبہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو حضرت بھائی کے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پانچواں نقصان ہے. اور اللہ بچائے اگر گناہ کرتے 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 اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے وہ وقت آ جائے کہ دل میں دم لگ جائے تو حضرت فرماتے ہیں کبھی یہ کفر کا سبب بھی بن جاتا, آدمی کے دل سے ایمان چلا جاتا اللہ بچائے. تو اس واقعے بڑی خطرناک چیز ہے, اس سے بچنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اور بھائیوں اس کے اہتمام کے لیے یہ تمام مراقبات جو حضرت نے فرمائے ہیں ان کو بار بار سوچتے رہیں, اور جب گناہ کا موقع آئے تو اس وقت اپنی ہمت کو استعمال کر کے, اللہ نے مجھے ہمت دی ہے مجھے عزم دیا ہے, اس ہمت اور عزم کو استعمال کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں. اور اگر خدا نہ کرے کبھی پاؤں پھسل جائے تو فوراً توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہو کر اس کا ادارہ کرے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پھر احمد جان سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم آت انفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك التوفيق بمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين ابن فضل وكرمك في العمل ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی مکمل توفیق عطا فرما دے. یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے. یا اللہ اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما دے. یا اللہ ہم میں ہمت ہے ہمت عطا فرما, بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے عزم میں طاقت عطا فرما, ہماری ہمت میں طاقت عطا فرما, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا اللہ سب کی مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے آسان فرما. اللهم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين. برحمتك.